તારીખ 25/3/1991 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 827 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 4
गुरुदेव कहते थे, देखो ज्ञानियों को भी सत्संग की कितनी भावना होती है। ये तो श्रीमद् जी के ग्रंथ में, तो उसके बहुत से पत्र में ये बात मिलती है कि खुद ही बहुत हैरान परेशान है बिना सत्संग। गुरुदेव तो वहां तक कहते थे कि अगर कोई भावलिंगी संत मिल जाए हमें, तो हम तो इसके पीछे चल निकले, इसके चरण में बैठ जाए और इसके पक्के तलवे हम चाटने लगे। इतनी भक्ति से वो बात करते थे, क्योंकि आत्महित ही जिसको करना है उसको इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आती है, और जहां तक फर्स्ट प्रायोरिटी आती नहीं, लास्ट प्रायोरिटी में हम बैठे हैं, यहां से उठे ही नहीं। ये बात जहां तक समझ में नहीं आती है कि सत्संग का महत्व कितना है, वहां तक हम जो जगह बैठे हैं उस जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। क्योंकि जिसको निमित्त का भी विवेक नहीं है, उसको उपादान का विवेक हो सकता है? इसकी बात हम सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते, क्योंकि उपादान का विषय तो अधिक सूक्ष्म है। ये परमागमसार में गुरुदेव ने बोला है। गुरुदेव के विषय में जो अफवाहें चली, उसमें एक अफवाह वो ऐसी थी के कांजी स्वामी निमित्त को नहीं मानते, इसलिए इसके पास नहीं जाना चाहिए। रूमर जिसको बोलते हैं, अफवाह बोलते हैं, देखिए इनका वचन में पढ़ता हूं, वो निमित्त को कितने ठोस रूप से मानते हैं। जिसके ज्ञान में विवेक प्रकट हुआ हो, ये वचनामृत नंबर 827 है, 827 नोट कर लीजिए, घर पे दिख लीजिए या और ध्यान से। जिसके ज्ञान में विवेक प्रकट हुआ हो, और विवेक प्रकट होने से अरहंत आदि को स्मरण करके नमस्कार करते, ये अपने प्रिय सगे संबंधी है। कौन? अरहंत आदि, संसार के नहीं, ये तो जंजाल है। जैसे शादी वगैरह प्रसंग में प्रिय सगे जन को हम निमंत्रण देते हैं, ऐसे धर्मक में इष्ट ऐसे सिद्ध अरहंत जिनबिंब आदि को स्मरण करके नमस्कार करने में आता है। इसके उपकार को भूलते नहीं। आज हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि ये भगवान महावीर स्वामी का शासन चलता है,
कहते हैं कि नहीं कहते?
भले 2500 साल हो गए, लेकिन हम कहेंगे कि हमारे उपकारी जो है भगवान महावीर है, इसलिए कि इनकी दिव्य धनि में जो बात खुली, ये बात की परंपरा आज ही चल रही है। मूल में तीर्थंकर देव विराजमान है, इसके उपकार को नहीं भूलते। कितने जीव सनातन दिगंबर परंपरा का शास्त्र पढ़ करके भी कुदेव आदि नाम से चलाते हैं, स्थापना करते हैं ना, मंदिर में अन्य देव की स्थापना करते हैं, इसलिए वे अनंत संसारी है जिनको सच्चे निमित्त का बहुमान नहीं आता, उसको आत्मा का महात्म बहुमान महिमा तो आती ही नहीं। देखिए क्या निमित्त के विषय में कौन से वचन निकले हैं कि जिसको सच्चे निमित्त का बहुमान नहीं आता, उसको अपने आत्मा का महात्मा आता हो महिमा आती हो बन ही नहीं सकता, अशक्य है, इम्पॉसिबल बात है। निमित्त का विवेक, अब कहते हैं निमित्त का विवेक ये वास्तव में आत्मा का विवेक है। क्या कहा, लोग कहते थे कि स्वामी जी निमित्त को नहीं मानते थे, अभी वो क्या कहते हैं कि निमित्त का विवेक वास्तव में आत्मा का विवेक है। देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष चार निमित्त हैं हमारे पास, तीर्थंकर देव, भावलिंगी संत गुरु लग्न दिगंबर, और इनके वचन ये शास्त्र, और इससे आगे जावे तो जिसको आत्मज्ञान प्राप्त है ऐसे जो सत्पुरुष है वे चार निमित्त है। इसमें तीन जीवंत है, वचन है वो खुदगलात्मक है, चाहे सुनने में आता हो चाहे पढ़ने में आता हो सभी खुदगल का ही पर्याय है। लेकिन अरियंत परमात्मा है, गुरु भगवंत है, और सत्पुरुष भी ज्ञानी है, और जिससे भी हमारा हित हो हमारे लिए तो ये परमात्मा के समान होता है। अब कहेंगे कि इतने बड़े टाइटल क्यों दे दिया कि हमें तो तरने तिरने से मतलब है, जिससे भी हम तिर सकते हैं भव समुद्र में डूबते हुए, हमारे लिए तो वही परमात्मा। परमात्मा क्या करता है, तिरने में निमित्त होता है। हमको कौन तारता है, ये बात तो इनके पक्ष की रही, तारने वाले के पक्ष की, लेकिन हम तो हमारा फायदा देखते हैं कि हमको कौन फायदा करते हैं। 84 में आपने एक बड़ा सोगाने जी का चाकड़ा लगाया था स्टेज के पीछे कि गुरुदेव तो मेरे लिए अनंत तीर्थंकरों से अधिक है, मैंने परमात्मा नहीं परमात्मा से अधिक ऐसा कह दिया। क्या परमात्मा का अपमान नहीं हो जाएगा, अवमान नहीं हो जाएगा, अवगणना नहीं हो जाएगी कि नहीं होती। उन्होंने तो साफ कर दिया है बात कि जैसे कोई अरबपति हमें कुछ नहीं दे भले कितने ही हो विश्व में, लेकिन कोई लखपति हमको दरिद्र अवस्था में मदद करता है और हम अरबपति हो गए तो हमारे लिए तो सारे विश्व के अरबपति से भी ये लखपति है वो बढ़िया है, है कि नहीं है। प्रैक्टिकली क्या कहेंगे हम कि आज हम है ये इनके कारण से है, अगर उस दिन उन्होंने हमको लाख रुपया नहीं दिया आज हम अरबपति नहीं होते। तो पूरा हमारा भव रोग का नाश होता है सम्यक दर्शन होकर के, तो हमको तो 100% फायदा हुआ, जो फायदा हमको भगवान से मिल सकता है वही फायदा हमको सतगुरु से मिला। हमें हमें कुछ कम मिलता है क्या, जब हमें कम नहीं मिलता है तो हमारा तो बराबर का हो ही गया हमारे लिए, तो इससे भी ज्यादा कुछ रहस्य है इसमें, हम आपको बाद में पढ़ाएंगे थोड़ा, ये श्रीमद् जी के अपने वचन में है। यहाँ तो इतने कहते हैं कि स्वरूप स्वरूप दृष्टि जिसको हुई है उसको सही निमित्त के विनय विवेक आए बिना रहता नहीं, बने नहीं सकता। आप देखिए कि सबसे पावरफुल अगर कोई वचन है तो नियम सार में है, एक समय की क्षायिक पर्याय परद्रव्यम परभावम हेयम इति, ऐसा कह दिया। ये बात नियम सार के अलावा कोई जगह नहीं मिलती है। क्षायिक पर्याय मैंने केवल ज्ञान और परमानंद, अनंत चतुष्ट क्षायिक भाव से उत्पन्न होते हैं 13वें स्थान में। ये भी इसको भी परद्रव्यम परभावम हेयम इति ऐसे नियम सार में जो कहते हैं पद्म ब्रह्मलधारी देव, उसकी भक्ति देखो आप, इतनी बढ़िया भक्ति भी अध्यात्म शास्त्र में कहीं नहीं दिखेगी जितनी समय सार में दिखेगी। मतलब एक सिक्के की दो बाजू है, जैसे द्रव्य दृष्टि प्रकाश पड़ा होगा आप, दृष्टि प्रधान कितने तिखे वचन है, और गुरुदेव की भक्ति भी उतनी ही की है उन्होंने कि तीर्थंकर से भी अधिक है। आजकल तो ये हजारों मुमुक्षों में किसी ने ऐसी बात नहीं की थी इसके पहले, तो बात की बात दूसरी है, असल है वो असल है, नकल है वो नकल है। तो पहले जब ये बात निकली तो ये विचार में होंगे कि ये इतना राग होता है क्या, अरे जिसकी दृष्टि जितनी तेज है उतना उसका भक्ति भी उतनी उस प्रमाण में होती है, उसी मात्रा में ये भक्ति आए बिना रहेगी नहीं। ये एक सिक्के की दो बाजू, जितनी शुद्ध पर्याय तेज, ये पद्म प्रबंधारी देव भावी तीर्थंकर है, हाँ निकलता है अपने कलश में से निकलता है, गुरुदेव ने निकाला है एक कलश में से। तो जितनी तेजी है अपनी अवस्था में उतने उस वक्त जो राग मौजूद है वो मौजूदा राग में सच्चे निमित्त के प्रति इतना जोर से उछाला आएगा, ये बहुत स्वाभाविक है, एकदम नेचुरल बात है, कृत्रिमता इसमें नहीं है, ऐसा होता ही है। लेकिन लोग निश्चय का बहाना पकड़ करके भूले हुए हैं, ये लोग व्यवहार को भी समझते नहीं, ये निश्चय और व्यवहार दोनों भूले हुए हैं। क्या बात क्या करते हैं? अब जो है सत्पुरुष के विनय के विषय आपको एक बहुत बढ़िया चीज इसमें से देखने को मिलेगी, पत्रांक 212 या 13 है, 213 में मेरे प्रत में पेज नंबर 272 272 क्या कहते हैं देखिए, तीसरा पैराग्राफ से देखिए, त्रिलोक के नाथ जिसके वश हुए हैं, किसको, सतपुरुष को। कौन त्रिलोकी नाथ हैं? अपना त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, जिसकी दृष्टि ने अपने परमात्मा पर कब्जा लिया, कब्जा कर लिया, इसलिए त्रिलोक के नाथ जिसके वश हुए हैं। ऐसा होने पर भी ऐसी कोई अटपटी दशा से रहते हैं संसार में कि जिसकी सामान्य मनुष्य को पहचान होना दुर्लभ है, ऐसे सदपुरुष की हम पुनः पुनः स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं श्रीमद जी खुद, हम पुनः पुनः उसकी स्तुति करते हैं कि संसार में रहते हुए भी लोग पहचान नहीं सके उसको, पर भीतर में देखो तो त्रिलोक का नाथ को बस कर लिया है, उसने कब्जा कर लिया है। एक समय भी सर्वथा असंगता से रहना त्रिलोक को वश करने की अपेक्षा से भी विकट कार्य है। ऐसी असंगता से जो त्रिकाल रहा है उस सत्पुरुष के अंतकरण को देखकर हम परम आश्चर्य पाकर नमन करते हैं। देखो पैर पैर पर भक्ति करते हैं, आगे कहते हैं कि हे परमात्मा, अब तीर्थंकर देव को कहते हैं हे परमात्मा, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष हो सकता है। देखिए तीर्थंकर देव को क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं कि हम इस काल में भी जीव का मोक्ष हो सकता है, फिर भी जैन ग्रंथों में क्वचित प्रतिपादन हुआ है तद अनुसार इस काल में मोक्ष नहीं होता हो कदाचित, तो इस क्षेत्र में यह प्रतिपादन तो रख, क्योंकि महावेदे में यह बात नहीं चलने वाली है, और हमारे में मोक्ष देने की अपेक्षा ऐसा योग प्रदान कर कि हम सतपुरुष के श्री चरणों का ध्यान करें और उससे समीप ही रहें। चूंकि इस क्षेत्र में मोक्ष नहीं है तो हमें सतपुरुष का चरण का योग का प्रदान कर दे, इतना कार्य कर दे, बस फिर हमको मोक्ष मिलता है नहीं मिलता है कोई चिंता हमें नहीं है। अब आगे कहते हैं कि हे पुराण पुरुष, मैंने अपनी आत्मा, ये पुराण पुरुष है, अपना आत्मा है वो अनादि का है ना, इसलिए पुराण पुरुष कहा कि हे पुराण पुरुष, हम तेरे में और सत्पुरुष में कोई कोई भेद ही नहीं समझते, तेरी अपेक्षा से हमें तो सत्पुरुष ही विशेष लगता है। देखिए अब क्या कहते हैं कि तेरी अपेक्षा हमें तो सत्पुरुष विशेष लगता है, कारण कि तू भी उसके अधीन हो रहा है, इसकी दृष्टि के कब्जे में तो तू आया है, तेरे कब्जे में वो नहीं आया, और हम सत्पुरुष को पहचाने बिना तुझे पहचान नहीं सके। क्या बात हुई कि बिना सत्पुरुष हमें तेरी पहचान नहीं हुई, आत्मा की पहचान पहले नहीं होती है, पहले ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है, और ज्ञानी पुरुष की पहचान होने के बाद अपने स्वरूप की पहचान होती है, क्योंकि ये तो प्रकट हुई है उनकी दशा, सत प्रकट हो गया है, जो प्रकट सत को नहीं समझ सकते वो अप्रकट सत को कैसे समझेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि हम सतपुरुष को पहचाने बिना तुझे पहचान नहीं कर सके, वही तेरी दुर्घटता, हम में सतपुरुष के प्रति प्रेम अधिक प्रेम उत्पन्न करती है, क्योंकि तू वश में होने पर भी वे गुणमत नहीं है, इतनी संपत्ति मिले फिर भी वो किसी को दिखाते नहीं है, आडंबर करते नहीं है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, उन्मत्त नहीं है और तेरे से भी बहुत सरल है, तू इतना सरल नहीं है जितना वो सरल है, तेरे से भी सरल है, इसलिए अब तू जैसा कहे वैसा करे, अब तो हम तेरे पर निर्णय छोड़ देते हैं, क्योंकि तू तो अव्यक्त परमात्मा है और वो व्यक्त है, तो तेरे से सरल हुआ कि नहीं हुआ, पहचानने में तो तेरे से वो सरल है, अब तुम्हें बता क्या करें, हम जैसा तुम कहे वैसा कर लेंगे, लेकिन हमारे न्याय में तो वो बात आती है, हे नाथ तू बुरा मत मानना, मैंने इतना कह दिया कि तेरे से भी सरल है तो बुरा मत मानना, देखो कैसे कलम चलाई है कि हम तेरी अपेक्षा से भी सतपुरुष की विशेष स्तुति करते हैं, इसमें तुम बुरा मत मानना, सारा जगत तेरी स्तुति करता है तो फिर हम एक तुझसे विमुख बैठे रहेंगे तो उससे कहां तुझे न्यूनता भी है, तुझे कोई नुकसान तो जाने वाला है नहीं, सारा जगत तेरी स्तुति करता है, अगर हम तेरी स्तुति करके बजाय हम सत्पुरुष की कर लें, तुम्हें तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और उनको सत्पुरुष को कहाँ स्तुति की आकांक्षा है, सत्पुरुष तो चाहते भी नहीं है कि मेरी स्तुति कोई करे। तो यहाँ तक ये जो 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ है ये सत्पुरुष के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने लिखा है। मतलब ये है कि हमें आज सोचना है कि हमें अगर कुछ आत्मज्ञान की निमित्तभूत अनिवार्य परिस्थिति में जाना ही पड़ेगा, जब ही आत्मज्ञान हो सकता है, बिना देशनालब्धि सिद्धांत बार की चीज है, तो आज केवलियों का तो जमाना पूरा हो गया। बात हो रहती है एक भावलिंगी संत की, निर्ग्रंथ गुरु की, और एक सत्पुरुष की, दो ही जीवंत निमित्त है। सीधा आगम से आत्मज्ञान किसी को हो जाए, ये तो कैंसर पैदा होने के बाद किताब पढ़ने की बात है। ये तो कैंसर का भी बाप है, फल रोग है। कैंसर तो एक दफे मारता है, मिथ्या तो अनंत बेर मारता है। इतना गंभीर रोग है ये। कैंसर की गंभीरता हमें लगती है, मिथ्यात्व की, अज्ञान की गंभीरता हमें नहीं लगी। तो कहते हैं कि कौन है जानकार, जब हमें आत्मज्ञान चाहिए तो कौन है इस विश्व में आत्मज्ञानी। कहीं भी हो हमें जाना चाहिए, हमें पहचान करना चाहिए, और हमें इससे ज्ञान प्राप्ति करने की जो भी योग्यता है, इस योग्यता की प्राप्ति के लिए हमारी मानसिक तैयारी हो जानी चाहिए। अभिप्राय हमारा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो भी करना चाहिए हम करेंगे, लेकिन हमें हमारे गुरु को मिटाना है, मिटाना है, मिटाना ही है। इस मनुष्य की आयु पूरा करते पहले पहले अनंत जन्म मरण चालू रहे, इस हालत में हम गुजरना नहीं चाहते। क्या निश्चय होना चाहिए कि जिस हालत में अनंत भाव भ्रमण चालू रहे, इस हालत में हमें ये आयु ने पूरी करनी है। ये बार बार मिलती नहीं है, और इस काल में तो मिलने का सवाल ही नहीं है। ये ऐसा काल है, परिणाम देखते हैं हमारे दूसरे के, पता चल जाता है कि क्या हालत है मनुष्य की। तो उनके लिए इतनी तैयारी नहीं हो, वहां तक पात्रता का सवाल पैदा नहीं होता। बिना पात्रता को ज्ञान प्राप्ति हो जाए, बिना योग्यता को ज्ञान प्राप्ति हो जाए, ये बात तो सोचने लायक भी नहीं है। तो उसी पर वजन दे करके ये पत्र सत्संग पर लिखा है, 609 नंबर का, कि ऐसा सत्संग भी बात मिला है, कई बार मिला है, बहुत बार मिला है, फिर भी उस सत्संग को पहचान कर मैंने मूल्यांकन करके क्या मूल्य है इसका, इस जीव ने, मैंने, हमारे जीव ने उसे परम हितकारी, उत्कृष्ट हितकारी नहीं समझा। परम स्नेह से उसकी उपासना नहीं की, परम स्नेह से, उत्कृष्ट स्नेह से। अगर हमारे घर पे हमारे विवाहित, विवाहित कहते हैं ना आप, अगर आ जाए तो आज का सत्संग छोड़ देंगे। बड़े मेहमान आ गए हैं, उसमें भी पैसे वाला हो, आबरू वाला हो, और ठीक हमारे सत्संग के टाइम पर आ गए, आइए साहब, विराजो विराजो, कहाँ जा रहे हैं, अरे कुछ नहीं कहीं जाते नहीं थे, आप आगे क्या बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उतने भी नहीं कह सकते कि चलिए आप हमारे साथ हैं। सत्संग तो जीवन में करने लायक चीज है, मेरे साथ आपको भी थोड़ा बहुत लाभ जाएगा, आपको कुछ चीज हम दें, आपका कुछ स्वागत करें, ये बढ़िया से बढ़िया स्वागत है अगर सत्संग का लाभ दिला सकते हैं तो। लेकिन इस प्रकार का पारलौकिक व्यवहार लौकिक व्यवहार की महत्ता में हम खो बैठे। एक मामूली सा मेहमान आ गया, अरे बहनोई आ गया, बहनोई के पिताजी आए तो दूसरी बात, चलो भाई इसको बुरा लग जाएगा, अपने को उपस्थित रहना पड़ेगा, बिराजो बिराजो, ये खाना ये पीना ये धमाल चलती। कौन किसके सगे हैं, है कोई? कि जब मृत्यु होती है तो ये बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि आखिर में तो कोई किसी के सगे है ही नहीं। और इसका क्या था, क्या ले गया? अगर कुछ था तो ले जाता, इसका कुछ था ही ना तो कुछ ले ही नहीं गया, क्योंकि उसका कुछ नहीं था, मान करके बैठ गया था, ये सब कुछ मेरा है, मेरा अधिकार है, मैं धनी हूं। तो ये संसार में रुलाने की चीज है, किसको महत्व देना, किसको प्रायोरिटी देना। परम स्नेह से उसकी उपासना नहीं की और प्राप्त का भी अप्राप्त फलवान होने योग्य संज्ञा से विसर्जन किया है, ऐसा कहा है वितराग, श्री वितराग ने ऐसा कहा है के सत्संग प्राप्त होने पर भी प्राप्त हुए उसमें जैसा फल मिले ऐसे भाव में हम सत्संग के योग में गुजरे। यही हालत हमारी सत्संग की उपस्थिति में रही, तो बिना सत्संग तो क्या हालत हो जाए, सिवाय दुर्गति सिवा अधोगति कुछ हो ही नहीं। यह जो हमने कहा है इतनी बात करते हुए उसी बात की विचारणा से उस बात की लाभ कितनी है इसकी गहराई में जाते हैं, हमारा भाव इतनी गहराई में चले जाते हैं कि हमारी आत्मा में आत्मगुण का आविर्भाव होकर सहज समाधि पर्यंत प्राप्त हुए ऐसे सत्संग को मैं अत्यंत अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता। देखिए श्रीमद् जी की खुद की कितनी भक्ति है कि ये सत्संग की महिमा बताते बताते इनके भाव इतने आविर्भाव हुए कि आत्मगुण जो प्रकट थे उसमें कुछ और भावना आ गई और तेज हो गए, और तेज होते क्या हुआ कि सहज समाधि पर्यंत प्राप्त हो गए, निर्सहज समाधि में निर्विकल्प दशा। क्या होता है कि वो खुद तो ज्ञानी थे, ये 28 साल का पत्र है, 24 साल की उम्र में उसको सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञान दशा में चलते हैं, सत्संग की महत्ता मुमुक्षुओं को दर्शाते दर्शाते उनको इस सत्संग से जो लाभ भूतकाल में अगले भाव में उनको हुआ था उसमें उसकी भावना इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो मुझे तो आत्म लाभ हो गया था, तो उसकी गहराई में जाते ही अपनी परिणति तेज हो गई, पुरुषार्थ तेज हो गया, वो परिणति वाला पुरुषार्थ उपयोग में बदल गया, सहज समाधि पर्यंत चल गए, निर्विकल्प समाधि में आ गए। ऐसे सत्संग को हम नमस्कार करते हैं, अत्यंत अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं। ऐसा कहा है क्या हुआ है कि इस भाव में उनको कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिले थे, अगले भव में जाति स्मरण वाले थे, उनको बहुत परिश्रम किया है लेकिन अपने आप के परिश्रम में वो सफल नहीं हो पाए। और ज्ञानी पुरुष मिलते ही जैसे चुटकी बजाए वैसे सहज मात्र में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली, क्योंकि तो एक समस्या ऐसी है कि जो सलटती है तो ऐसे सलटती है, नहीं सलटती है तो अनंत काल रुलता है जी। ये पत्र है इनका 194 नंबर का। पेज है 262 262। जीव को मार्ग मिला नहीं है उसका क्या कारण, इसका बारंबार विचार कर योग्य लगे तब साथ का पत्र पढ़ें। जिसको पत्र लिखा है उसमें साथ का पत्र, कवरिंग लेटर जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर जो कुछ योग्य लगा से लिखा है, हमें लगता है कि मार्ग तो सरल है परंतु प्राप्ति का योग मिलना दुर्लभ है। अब क्या लिखता है देखिए, ये पत्र जो संलग्न पत्र है वो है कि सत्स्वरूप को अभेद भाव से और अनन्य भक्ति से नमो नमः। सत्पुरुष मैंने अपने सत्स्वरूप मैंने अपने आत्मा को हेडिंग में प्रारंभ में नमस्कार करके पत्र का प्रारंभ करते हैं कि जो निरंतर भाव अप्रतिबद्धता से विचरते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद के प्रति अचल प्रेम हुए बिना कभी प्रेम होवे और कभी विचलित हो जाए ऐसी बात नहीं है। अचल प्रेम हुए बिना और सम्यक प्रतीति आए बिना सत स्वरूप मैंने अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती और आने पर अवश्य वे मुमुक्षु जिसके चरणारविंद की उसने सेवा की है उसकी दशा को मैंने ज्ञानी पुरुष की दशा को वो मुमुक्षु प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञानियों ने इस मार्ग का सेवन किया है भूतकाल में, सेवन करते हैं वर्तमान काल में और सेवन करेंगे भविष्य काल में। मैंने तीनों काल में यही परिस्थिति है। ज्ञान प्राप्ति इससे हमें हुई थी, क्या लिखा, ज्ञान प्राप्ति इससे हमें हुई थी भूतकाल में। इस भाव में तो कोई मिले ही नहीं, कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिले, भूतकाल का स्मरण है। तो ज्ञान प्राप्ति इससे हमें हुई थी, वर्तमान में इसी मार्ग से होती है और अनागत काल में भी ज्ञान प्राप्ति का यही मार्ग है। सर्व शास्त्रों का बोध लक्ष्य यानी बोध का लक्ष्य हेतु देखा जाए तो यही है। और जो कोई भी प्राणी छुटना चाहता है संसार के परिभ्रमण से उसे अखंड वृत्ति से इसी मार्ग का आराधन करना चाहिए। इस मार्ग का आराधन किए बिना जीव ने अनादि काल से परिभ्रमण किया है, यही परिभ्रमण का कारण है। जब तक जीव की स्वच्छंद रूपी अंधत्व है, जब तक जीव को स्वच्छंद रूपी अंधत्व है तब तक इस मार्ग का दर्शन नहीं होता। वो कहेंगे तो निमित्त की बात है, निमित्त प्रधान बात है, निमित्ताधीन दृष्टि वालों की बात है, ऐसे कहेंगे। ये स्वच्छंद है, अंधत्व दूर होने के लिए जीव को इस मार्ग का विचार करना चाहिए, दृढ़ मोक्षेच्छा करने चाहिए। क्या लिखा, दृढ़ सम्यक दर्शन की इच्छा नहीं लिखा,
दृढ़ मोक्षेच्छा करने चाहिए, पूर्णता का लक्ष्य। इस विचार में यह प्रमत रहना चाहिए और तो मार्ग की प्राप्ति होकर अंधत्व दूर होता है, यह निशंक माने। अनादिकाल से जीव उल्टे मार्ग पर चला है, यद्यपि उसने जप तप शास्त्र अध्ययन इत्यादि अनंत बार किया है, तथापि जो कुछ भी अवश्य करने योग्य था सत्पुरुष के चरण में जाने का, वह उसने किया नहीं है, वो हमने पहले ही बताया है। लिखे क्या लिखा है, जप तप शास्त्र अध्ययन ले लिया है, ये किया है, लेकिन सत्पुरुष की महत्वा जो होने हैं वो हमें नहीं आई। ये बात जो महत्वपूर्ण है वो अपने अनुभव से उन्होंने लिखी। अब कहते हैं कि इस विचारणा से तो इनका लाभ देखते हुए हमारे आत्मा में इतने भाव पैदा होते हैं कि हम सहज समाधि पर्यंत प्राप्त हो गए हैं। लिखते लिखते ये बात हो गई होगी, इसलिए उन्होंने लिख दिया। ऐसे प्रमाणिक है लिखने वाले कि अपना दोष वो कहते हैं मुमुक्षु के सामने। देखिए, मुमुक्षु अगर ज्ञानी पुरुष के पास अपना दोष का निवेदन करे हो सकता है, लेकिन ज्ञानी चला करके अपने आप उठ करके मुमुक्षु के पास अपना दोष लिख दे रहे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जिसको कहते हैं, बोलने में तो आदमी फिर सकता है, लिखने में बदल नहीं सकते, है ना, लिख के दिया है कि हमको ऐसा भाव होता है, अभी भी हमको ऐसा भाव होता है, बहुत दुख होता है, हम अब क्यों ऐसा भाव, ज्ञान दशा में चारित्र मोह के परिणाम लिखे हैं पर मुमुक्षु के सामने लिखे हैं। इतने जो प्रमाणिक है, ऐसे प्रमाणिक सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष अगर कहें कि इस बात को लिखते हुए हमारे भाव सहज समाधि पर्यंत चले गए, असत्य नहीं लिख सकते, ऐसी बात में असत्य नहीं लिख सकते। तो हमें ये बात को सोचना है इधर कि जब इनको इस भाव के महत्व आने पर भी अपने भूतकाल के स्मरण के हिसाब से उनको सहज समाधि दशा होगी, तो ये सत्संग का सत्पुरुष योग का कितना महत्व उनको भाषित हुआ है कि जिसका पत्र हमने आगे 213 नंबर आपको पढ़ाया कि भगवान को और त्रिकाली आत्मा को साइड ट्रैक में रख करके सत्पुरुष को फर्स्ट ट्रैक में रखते हैं, इतना सत्संग का महत्व दे दिया है और इतनी कलम चलाई है इस पर। तो आज कुछ हो सकता है तो कोई ज्ञानी पुरुष का योग बैठ सकता है, दूसरा योग तो आजकल बैठने का कोई आसार नहीं दिखता, तीसरे का तो कोई जमाना है ही नहीं, ये तो आगम में समाप्त हुई बात, चतुर्थ काल पूरा हो गया और चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले भी जो मोक्ष में जाने वाले थे मोक्ष में गए, नहीं गए सो स्वर्ग में भी गए, जैसे भी हुआ अवश्य इस जीव को प्रथम सर्व साधनों को गौण मानकर निर्वाण के मुख्य हेतु सत्संग, सर्वेक दर्शन के नहीं, निर्वाण के मुख्य हेतु सत्संग की ही सर्वार्पणता से उपासना करना योग्य है। सर्वार्पण बुद्धि से उपासना करनी चाहिए कि जिससे दूसरे सर्व साधन सुलभ होते हैं, ऐसा हमारा आत्म साक्षात्कार है। क्या शब्द प्रयोग किया, ये हमारे अनुभव की हम बात लिखते हैं, हम कोई सीखी सिखाई पढ़ी पढ़ाई कोई बात नहीं लिखते, हमारे अनुभव की बात लिखते हैं कि ये क्या हुआ है। उन्होंने भूतकाल में बहुत परिश्रम किया है, जितना हम लोग आज नहीं कर सके उतना किया है, लेकिन मार्ग नहीं मिला और कोई सत्पुरुष मिल गए, उनको मार्ग ऐसा मिल गया तो उनको ये हो गया, अरे बस यही नहीं किया और सब कुछ कर लिया था, यही नहीं किया। सारे बात समझी पड़ी लेकिन इस बात का महत्व हमें आया नहीं, तो हम जो है इस विषय से अभी अनभिज्ञ रहने से मार्ग का पता हमें नहीं चलता है। ये अनंत काल में ये भूल रह जाती है। कहीं बातें अच्छी अच्छी सुंदर बातें अध्यात्म की दिमाग में आ सकती है, बुद्धि में आ सकती है, समझ सकते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। ऐसा प्राय देखने में आज भी आता है। मुमुक्षु समाज के प्रति दृष्टि करते हैं तो हमें पता चलता है कि सामान्य अनुकूलता प्रतिकूलता को कितनी हम मुख्यता देते हैं और सत्संग को किस तरह काम करते हैं। इस तरह जो है ये जीव को सर्व साधन को गौण करके, मैंने दूसरे जितने भी बाह्य साधन हैं उसके गौणता कर दो। अगर सत्संग मिलता है तो, सत्संग नहीं मिलता है दूसरी बात है कि हम कोई भी साधन कर ले गए, लेकिन सत्संग मिलता है तो सर्व को गौण करके इसकी उपासना सर्वार्पण बुद्धि से करना चाहिए, पूरी अर्पणता से करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं समझे तो आगे की कोई बात हमें फायदा कर सकती है ये बात बनने वाली नहीं है। आगे की बात सम्यक दर्शन कोई आकाश में अधर बिना आधार कोई रहता है क्या? सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक दृष्टि आत्मा के आधार से उत्पन्न हुई है और उसके साथ वो अभेद है। हम पर्याय का एक टुकड़ा कर दे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। कैसे कि अभी हम क्या करते हैं, पर्याय का टुकड़ा करते हैं। राग है सो मैं, या ये मनुष्य पड़ा है सो मैं हूं, क्या किया, एक टुकड़ा कर दिया वर्तमान अवस्था का, एक पूरा का पूरा टुकड़ा कर दिया। ऐसा कहीं नहीं होता। अवस्था है वो वस्तु का एक अवयव है, वस्तु का एक अंग है, और उसमें भी वो जो स्वाभाविक शुद्ध अवस्था है, गुरुदेव कहते थे कि एक तिरियंच सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन को से हम देखें तिरियंच को, और एक सिद्ध परमात्मा को हम सम्यक दर्शन की दृष्टि से देखे तो सम्यक्त्व की अपेक्षा से दोनों बराबर है, ऐसा कहते थे। तो अगर हम सम्यक दर्शन की पूजा अष्ट द्रव्य से करते हैं तो क्या सम्यक दृष्टि वंत जो है, सम्यक दर्शन वंत है, वो इसमें समाविष्ट नहीं होता क्या? अकेली एक पर्याय मिल सकती है हमें पूजा करने के लिए, कहीं भी हो सकती है, कहीं नहीं हो सकती। इसलिए जो सम्यक दर्शन की पूजा हो सकती है तो सम्यक दृष्टि की बराबर हो सकती है, उसमें कोई संदेह करने का गुंजाइश नहीं है। हाँ, तो परमिष्टि में वो नहीं गिनते, नहीं उसको नहीं लिया, तो पंच परमिष्टि में नहीं इसका स्थान है, वो बात बराबर। लेकिन प्रश्न तो दूसरा है, प्रश्न ये है कि पंच परमिष्टि में है कि नहीं है। अच्छा, पूजा हो सकती है, ये अलग प्रश्न है।
नहीं,
सम्यक दर्शन का है, सम्यक ज्ञान का है, सम्यक चारित्र का है,
पूर्ण रत्नात्रय का है,
है?
पूर्ण रत्नात्रय का है।
तो ये क्या सम्यक दर्शन अपूर्ण रत्न है क्या? सम्यक दर्शन कोई अपूर्ण रत्न है क्या? बात सम्यक दर्शन की चलती है। अगर कोई सम्यक दर्शन को समझता है तो सम्यक दर्शन कभी अपूर्ण और अधूरा हो सकता है क्या? ये संभव है क्या?
दर्शन ज्ञान चार की एक साथ की होती पूजा, अकेले हमें दर्शन की कभी नहीं होती
है। हमारे शास्त्र में पूजा की किताब अभी मैं देख दिखा सकता हूँ आपको,
पूरे एक साथ की है,
हमें दर्शन अकेला होता ही नहीं।
साथ में ही होता है, एकता तो हमेशा साथ में ही रहती है। अकेला सम्यक दर्शन हो गए, ज्ञान चारित्र नहीं हुए, वो भी बन नहीं सकता। ये कैसे बन सकता है? हो ही नहीं सकता।
नहीं, यहाँ बात ये है कि जो पूजा वाली बात है तो उसमें जैसा आपने पहले कहा कि रत्नात्रय की पूजा है, तो रत्नात्रय की पूजा में जो उन्होंने अलग अलग उनकी सम्यक दर्शन ज्ञान की चारित्र की पूजा की है, वो तो अलग अलग करके उसका विशेष भाव कहने के अर्थ से वहाँ पूजा की है। लेकिन उस रत्नात्रय में चारित्र की प्रधानता को ही करके वो तीनों को, क्योंकि वो सम्यक दर्शन और ज्ञान सहित ही होता है, तो हम अविरत सम्यक दृष्टि को चारित्र नहीं, मतलब ये है कि नहीं उसमें शामिल करते हैं। तो उस दृष्टि से यदि देखें और मात्र एक सम्यक दर्शन की प्रधानता को ही रख करके जो पूजा करते तो एक बात ही बराबर बैठती है।
अच्छा देखिए कि हम उस माँ चारित्र को नहीं गिनते हैं तो क्या जाति चारित्र के कोई विरुद्ध है क्या? जो चारित्र सम्यक दृष्टि को हुआ स्वरूप स्थिरता, एक सारे जगत को जीतने से ज्यादा ताकत स्वरूप में उपयोग स्थिर होने में लगती है, कोई मामूली चीज नहीं है।
ये
पराक्रम कितना है? ठीक है, अच्छा इसका पुरुषार्थ हम दिखाते हैं कि कितना पुरुषार्थ है। अच्छा, अविरत सम्यक दृष्टि है तो अविरत अवगुण है, गुण है, अविरत गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। अच्छा, सम्यक दृष्टि होने पर भी उनको हम अवगुण का विशेषण क्यों लगाते हैं? अब देखिए गोमट सार, पंडित टोडरमल जी साहब की सम्यक ज्ञान चंद्रिका, उनकी टीका अच्छी बात हुई है, ये बात निकली, इसमें हमने इसका आधार दिया है। दंशन मूलो धम्मो, अब पढ़ लीजिए या तो दूसरी नकल मिलेगी तो ये मुझे आपको वापस है ना। अच्छा, इसमें हमने एक गोमट सार का आधार दिया है, कर्णानुयोग के शास्त्र का, अध्यात्म प्रधान शास्त्र का दिया होता तो कोई दूसरी बात समझ लेते हैं, लेकिन ये टोडरमल जी साहब का है आधार कि अविरत क्यों कहते हैं। ये गुणवान होते ही हम उसको अवगुण से संबोधन कैसे करें, क्या कारण है इसके पीछे? उन्होंने आर्गुमेंट दिया है पंडित जी साहब ने खुद ने कि हमको उतना ही सिर्फ बताना है कि ये जो धर्मात्मा है फिर भी पंचम गुण स्थान वाले और उसके ऊपर के जो छठवें सातवें गुण स्थान वाले जो साधक हैं उतने वो नहीं है, इतना सिर्फ अपेक्षा रही है वहां, इससे ज्यादा कोई अपेक्षा मत लेना, ऐसा करके लिख दिया है। हमने बहुत गौर से इस बात को पढ़ा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका को।
ये आधार ही माने, क्योंकि आपने टोडरमल जी साहब का जो आधार दिया उसमें विवक्षा लग सकती है, और आपकी इस बात का यदि हम आधार यदि मानते हैं तो आपने फिर पंच परमेश्वरी में अविरत सम्यक दृष्टि को क्यों ना शरीक कर लिया जाए?
नहीं, वो तो क्या है कि वो तो उसके नीचे के स्थान में
ही इतनी ही मतलब अपेक्षा यदि माने तो ये तो बहुत कम नगण्य जैसी मतलब बात हो गई, तो फिर उसमें उसको शरीक करना है। परमिष्टि में अव्यसम्यक दृष्टि को सही कर लेना चाहिए।
नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हमने दूसरा भी आधार इसमें दिया है, कार्तिकेयान वृक्षरा, उसमें नवधा भक्ति से भक्ति करने योग्य तीन पात्र लिखे हैं, इसमें दिया है। उसमें चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति, पंचम गुण स्थान वृत्ति और साधु महाराज, तीन का नाम दिया है। ये दूसरे आचार्य का आधार है। सम्यक दर्शन की क्या महत्ता है, इसमें हमने सिर्फ आचार्यों के आधार लिए हैं, ज्ञानियों के नहीं लिए हैं, न श्रीमद रायचंद जी के लिए है, न गुरुदेव के लिए, न हम स्कोटरमल जी साहब के लिए, ये गोमठ सार निमिषेंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का है इसलिए लिया, और न हमने बनारसीदास जी के लिए, जैसे बनारसीदास बंधन करते हैं, लेकिन हमने आचार्यों के और मुनियों के आगम के ये आधार लिए, और करीब 175 आधार है, और करीब 55 से 60 आगम के आधार है। तो इसका महत्व हम समझे नहीं, हम हिसाब किताब करते हैं भक्ति में कि अरिहंत भगवान की जितनी भक्ति करे उतनी हमें श्री गुरु की नहीं करे, और श्री गुरु की करे उतनी हम सम्यक दृष्टि की नहीं करे, हम इसमें तोल करे तो पाव सिर इसको देवे, आधा सिर इसको देवे, एक सिर उसको देवे, भक्ति में ऐसा संभव नहीं है। वो तो भक्ति को जानता ही नहीं है कि भक्ति क्या चीज होती है।
भक्ति अलग चीज है, अष्ट द्रव्य से पूजा अलग चीज
है,
अष्ट द्रव्य से पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज
है। हाँ, नहीं, पूजा ये भक्ति का अंग है,
अष्ट द्रव्य से पूजा अलग
है। नहीं, पूजा
तो अपने हृदय में ही महिमा है।
ऐसा है कि आप, हमने पूजा के विषय में स्पष्टीकरण किया है कि पूजा के कितने अंग होते हैं, वो भी इसमें लिखा है, एक दफे आप इसको पढ़ लीजिए। बहुत से बातें हमने इस दृष्टिकोण को सामने रख के करी, इसका संकलन किया है। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए जो प्रश्न चल रहा है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या दृष्टिकोण है, इसको सामने रख कर के हमने आगम के आधार दिए हैं और सभी बातों का स्पष्टीकरण किया है। आधार के अलावा जो स्पष्टीकरण लिया है उसमें सभी बातों का दिया है।
मैं थोड़ा सामान्य उसको लेना चाहता हूँ, जो दृष्टिकोण से आप समझ रहे हैं या जिसने भी प्रश्न किया है, जिस दृष्टिकोण से किया वो मेरा दृष्टिकोण नहीं है, मेरा दृष्टिकोण एक सामान्य है, और उसमें ये बात जो आपने टूरम जी साहब के लिए कही, तो जहाँ तक मुझे स्मरण आता है कि टूरम जी साहब ने इस चीज को शायद 7वें या 9वें अध्याय में लिया है कि चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा की प्रतीति हुई है, वहाँ उसको चारित्र को उन्होंने नहीं,
मुख्यतया नहीं लेते हैं, मुख्यतया नहीं लेते हैं, लेकिन गोमठ सार में वही पंडित जी लिखते हैं कि जाति तो स्वरूपाचरण की, जो चतुर्थ गुण स्थान में है वही यथाख्यात चारित्र में है,
जाति
जाति में कोई फर्क नहीं
है। यहाँ तक बात है, वो तो अनंतानुमंदी का जो भाव हुआ है, तो वो तो स्वरूपाचरण चारित्र की जाति ही प्रकट होने पर ही हुआ है,
लेकिन पर वही जाते यथा क्या चारित्र में,
जाति अपेक्षा तो बराबर बात है, लेकिन जब हम चारित्र के भेद में आते हैं
तो ऐसा देखिए आप,
तो वहाँ हम
धर्म पूज्य है कि नहीं पूज्य है,
बराबर
धर्म पूज्य है कि नहीं पूज्य है, तो पूज्य है, तो धर्म पूज्य है और धर्म का धनी अपूज्य है, हो सकता है कहीं।
अब बात आती है धर्म,
जिसको धर्म की पर्याय प्रकट हुई ये धर्म का धनी है, हम धर्म को तो पूज्य मानेंगे क्योंकि ये पवित्र चीज है, पवित्र होते हुए भी अगर इसकी पूज्यता नहीं है जगत में तो ये बात तो विचारने लायक नहीं रहती। जब धर्म पूज्य है, धर्म पवित्र है, पवित्र है इसलिए पूज्य है, और पूज्यता का जो धनी है वो अपूज्य है, ये बात कहाँ के न्याय की है, न्याय कहाँ रहता है, अन्याय नहीं रहता है, अन्याय हो जाता है। धर्म भी पूज्य है, धर्म भी पूज्य है, ऐसी बात है।
नहीं, इसमें
सारे गुरुदेव तो वहां तक कहते थे कि एक सम्यक दृष्टि बैल होता है, बैल मनुष्य नहीं, अगर इसके पांव की नाखून, जिसको खरी कहते हैं गुजराती में, अगर कोई विष्टा को स्पर्श कर लेती है चलते चलते, तो विष्टा धन्य हो जाती है। इस गुरुदेव के वचन में क्या सम्यक दर्शन का महत्व ज्ञानियों को हुआ है वो तो अनुभवी जानते हैं। सुन नहीं सके इस बात को दोस्तों, तो बैल का नाखून जो निकृष्ट अंग है, उत्कृष्ट अंग नहीं है, पैर में भी एक ज्यादा है जो उसको काट लिया जाता है, मुर्दा जैसा है, खून नहीं निकलता है काटने से, नाखून को काटने से खून नहीं निकलता, मुर्दा है बिल्कुल। अगर उसका स्पर्श एक विष्टा को हो जाए ना, जो रास्ते पे पड़ी वो विष्टा धन्य होती है। ये गुरुदेव के वचन है सम्यक दर्शन के विषय। तो देखिए कि उन्होंने कितनी कितनी महत्ता आई है। आप पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, कि इसका मूल्यांकन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, इसलिए ही हम जो है सही मार्ग पर आ नहीं सके। वो तो उन्होंने कहा कि जब तक शास्त्र अध्ययन तो बहुत किया है, मैं शास्त्र अध्ययन में तो सब चीज आ जाती है, पंच परमेष्टी वाली दूसरे दूसरे सब अनेक प्रकार के अनंतानुबंधी कषाय संजलन कषाय यथाख्या चारित्र। अब देखिए इसका एक 225 नंबर का पत्र है या 223 है, देख लीजिए 223 है।
यह विषय का प्रयोजन
बहुत प्रयोजन, सबसे अधिक मुमुक्षु के लिए प्रयोगभूत विषय है। पेज नंबर है 279, 279। देखिए
279
परमात्मा को तीसरी पंक्ति से पढ़िए 279। परमात्मा को निरंजन और निर्देह रूप से चिंतन करने पर ऊपर से तीसरी पंक्ति मिला, परमात्मा को निरंजन और निर्देह रूप से चिंतन करने पर यह लय आना विकट है, इसलिए जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है ऐसा देहधारी परमात्मा उस पराभक्ति का परम कारण है। पराभक्ति मैंने आखिर के हद तक की भक्ति, उसको पराभक्ति उत्कृष्ट भक्ति कहते हैं। क्या कहा कि जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है ऐसा देहधारी परमात्मा उस पराभक्ति का परम कारण है। उस ज्ञानी पुरुष के सर्व चारित्र में एक भाव का लक्ष्य होने से उसके हृदय में विराजमान परमात्मा का एक भाव होता है। क्या कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष में उसको जिस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है ऐसी पर्याय और इस परमात्मा दोनों का एक करने से, यानी एक रूप में देखने से, स्वरूपाकार भाव देखने से, इसके हृदय में विराजमान परमात्मा का एक भाव होता है और यही पराभक्ति है। ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में अंतर ही नहीं, और जो कोई अंतर मानता है उसे मार्ग की प्राप्ति परम विकट है। ये आधार तो हमने लिया ही नहीं, ज्ञानी तो परमात्मा ही है और उसकी पहचान के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए सर्वथा
भक्ति करने योग्य, कैसे सर्वथा भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा की का नमस्कार आदि भक्ति से लेकर पराभक्ति से अंत तक, मैंने आखिर की भक्ति की जो हद है उस हद तक एक लय से आराधन करना, ऐसा शास्त्र का आशय है, ये आगम का आशय है, ऐसा कहते हैं। परमात्मा इस देहधारी रूप से उत्पन्न हुआ है, ऐसी ही ज्ञानी पुरुष के प्रति जीव को बुद्धि होने पर भक्ति उदित होती है और वह भक्ति क्रमशः पराभक्ति रूप हो जाती है। इस विषय में फिर वो भागवत का दृष्टांत दे दिया है। मतलब यह है कहने का कि उसमें परमात्मा का दर्शन किया जाता है। रहस्य क्या है, एक दूसरी बात उसमें से निकलती है कि उनको तो साक्षात्कार हुआ है अपनी परमात्मा का। अब हम क्या देखते हैं पूजा नहीं करने में, कि उसको चारित्र को देखते हैं, उसको जो चारित्र अचारित्र जो रह गया है उसको सिर्फ मुक्त करते हैं।
इसमें दूसरी उस ज्ञानी पुरुष के सर्व चरित्र में एक भाव का लक्ष्य होने से
तो उसका अर्थ ये है कि आप इनके सभी आचरण में उनकी आराधना को देखो, क्या कहना होता है। अच्छा, उसका अर्थ कथन के लिए आपको पत्र लेंगे 272 272, देखिए पेज नंबर 305 305 को देखिए। है 272 नंबर का पत्र। जिस महापुरुष का चाहे जैसा आचरण भी वंदनीय ही है। क्या लिखा है? जिस महापुरुष का चाहे जैसा आचरण भी वंदनीय ही है, ऐसे महात्मा के प्राप्त होने पर, मैंने योग होने पर